ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपको बिस्मी और अल्लाह, अल्लाह ताला का नाम आया, इसका माना बताना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि ये अल्लाह ताला का नाम जो यहाँ पे आया है तो अल्लाह क्यों आया, और ये अल्लाह ताला का नाम क्या है, इसका क्या माना है, क्या माना है। अल्लाह अल्लाह आज तक सुनते रहे, कितनी कितनी एजेस हो गई सबकी। अल्लाह का माना क्या है, एडवांस वाले लोग बताएं, एडवांस तालीमुल कुरान वाले। लिखें इसके ऊपर, आप अपने लाइव ब्रॉडकास्ट पे लिखें, अल्लाह का माना। देखें अल्लाह ताला का ये जो नाम है ना अल्लाह, ये सबसे ज्यादा कुरान करीम में आया 3,500 दफा, 3,500 टाइम्स आया ये नाम। ठीक है, वो अल्लाह का जो लुगवी माना है, जी काफी सही आप लोग बता रहे हैं कि ये इस वर्ड का ओरिजिन क्या है। तो उलमा इसके बारे में बताते हैं कि इसका माना, एक इसका माना अता करना, अल्लाह ताला को अल्लाह इसलिए कहते कि वो अता करता है, बल्कि सिर्फ वो ही अता करता है और हर चीज अता करता है। अता यानी जिसको जो कुछ भी मिला हुआ है वो अल्लाह ही का दिया हुआ ना, उसकी अता है। तो एक ये माना। नंबर टू माना, हैरान होना, ठीक है, यानी जितने भी अकल वाले हैं दुनिया में, जितने भी अपने आप को बहुत बहुत समझदार, अकलमंद और बड़े वो कहें, वो जितना अल्लाह ताला की शान में गौर व फिक्र करेंगे, उसकी अजमत में, उसकी कुदरत में, वो हैरान होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला की जो मखलूकात हैं वो ही हमें हैरान कर देती हैं, तो अल्लाह की जात क्या होगी। उसके अहकामात को सोचें, उसकी हिकमतों को सोचें, उसके जो भी मखलूकात हैं उनको देखें, उसकी कायनात की वुसअत को सोचें, तो आप हैरान हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला, अल्लाह जो है वो जिससे कोई हैरान हो जाए, ठीक है। अच्छा फिर सकून देना, ये भी अल्लाह के माना है, सकून देने वाला अल्लाह। इलाह से अली है, यली हूं, इससे ये निकला है ना, तो उसके मैं माने आपको बयान कर रही हूं। तो दिलों का सुकून उसकी याद से है, उसके हुक्मों पे चल के है, चैन और सुकून के खजाने उसके कब्जे में है, अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है सुकून उतार देता है और जितना चाहता है अता करता है, कोई और सुकून दे नहीं सकता। ठीक है ना, आप खुद देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भड़कती हुई आग में है और सुकून से बैठे हुए, और बादशाह अपने बड़े बड़े महलों के अंदर और आसाइशों के अंदर होते हैं, बेसकून होते हैं। तो इसका मतलब सुकून यहां से आप कहीं चीजों से ले नहीं सकते, कहीं से खरीद नहीं सकते, कोई आपको ला के नहीं दे सकता, वो सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है। फिर इसका चौथा माना, मल जा, जिसकी पनाह ली जाए, ठीक है, यानी दुनिया के गमों दुखों परेशानियों उलझनों में जिसके पास जाके पनाह मिल जाए, घबराए हुए दिलों को, परेशान दिलों को जो पनाह देता है, घबराहट में जो पनाह देता है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि अल्लाह मलजा है, पनाह देने वाला है। फिर महबूब, वो जिसके साथ शदीद मोहब्बत की जाए, तो यानी अल्लाह ताला के नाम का एक माना ये भी है कि जिस साथ शदीद मोहब्बत, शदीद ताल्लुक हो, और ये एक इस माने में भी आता है कि माँ जो अपने बेटे को बच्चे को खो दे तो उसमें जो वो मजनून हो जाती है उसको भी कहते हैं, उस मां को कहते हैं वल्लाह। यानी वो उसी से ये लफ्ज भी निकला है कि कोई अल्लाह वो है जिसके लिए यानी मखलूक उसकी मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में दीवानी हो जाए। तो इसीलिए अल्लाह के माने महबूब के भी हैं, प्यारे के भी हैं। तो वो जो ताल्लुक माँ को अपनी औलाद से होता है ना, उस वो जो गम, जो ताल्लुक, जो मोहब्बत है, उससे ये लफ्ज निकला। तो इसी से फिर उलमा कहते हैं अल्लाह ताला जो वो है जो मोहब्बत के लायक हस्ती है, जो महबूब हस्ती है। ठीक है, तो अब कितने माने आपको समझ आए? काफी माने समझ आए ना, जिसके जुदाई के सदमे में कोई मजनून हो जाता है, इसलिए माँ जिसका बच्चा उसे खो जाता है तो वो भी इसी तरह हो जाती है मजनून से, और जिसकी जिंदगी में अल्लाह नहीं है वो भी ऐसे ही हो जाता है। और इंसान अल्लाह से इतनी यानी मोहब्बत के लायक वो जात है, उसे वाकई वो महबूब जात है जिसे इतनी मोहब्बत की है। फिर आपको मैंने हैरान और शर्मसार रह जाने की भी बात बताई कि अकलें हैरान रह जाती हैं उससे, अकलें दंग रह जाए, एस्टोनिश्ड जिसको कहते हैं। फिर जिसकी तरफ हिफाजत और पनाह के लिए रुजू किया जाता है, अल्लाह की तरफ सभी रुजू करते हैं, सबको उसकी तरफ से हिफाजत चाहिए, पनाह चाहिए, वो मलजा है घबराहट में भी, दुश्मन से भी। फिर बुलंदी का माना भी है, तो जो अल्लाह पे ईमान रखता है अल्लाह उसको भी बुलंदी देता है, और अल्लाह खुद बुलंद है। ठीक है, और लास्ट वन आपको जो मैं बताना चाहती हूँ वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो तमाम जो उलमा इसके ऊपर मुत्तफिक हैं इस माने के ऊपर, और वो अली है या लहू, जिसकी इबादत की जाए, जो इस लायक हो कि उसकी इबादत हो, अल इलाह से ना, जो इस लायक है कि उसकी डिजर्व करता है इबादत। हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो ही इस लायक है इबादत की? लायक सिर्फ वो ही है, वो ही सिर्फ इस काबिल है कि सिर्फ उसकी इबादत की जाए, कैसे कह सकते हैं? कोई प्रूफ है इसका? हाँ, इसलिए कि हर कमाल सिफात सिर्फ और सिर्फ उसमें है। ये जो असमाए हुस्ना है ना, जितने आप 99 नेम्स पढ़ते हैं इसके अलावा भी हैं, ये भी जो आप कुरान करीम के शुरू में बाज दफा लिखे होते हैं, या इसके कार्ड्स भी आपको मिल जाएंगे अस्माए हुस्ना के, ये अल्लाह ताला की सिफात है। ये सिफात जो है ये कमाल की सिफात है, टॉप की। अब हम अगर हमें पता ही नहीं है ये सिफात हैं क्या, कहती क्या है, तो वो हमें क्या पता चलेगा अब। लेकिन चलो इस बात को आज तो ये समझ लें कि ये सिफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में है और किसी में है ही नहीं। अच्छा, अब आप देखिए ना, एक हमें बात बता दी गई इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। अच्छा, कुछ इसका आगे पीछे नहीं पता, बस एक जुमला रट लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट्स इट। उसके बाद इसीलिए बीच में शुभात आते हैं, शकूक आते हैं, पता नहीं क्या, पता नहीं ये सही है कि नहीं, पता नहीं कितनी आजकल ये फितने हैं, इसलिए कि हम इल्म नहीं लेते, हमें पता ही नहीं है हर चीज के पीछे। देखें, एक लॉजिक है, एक बात है, कोई इल्म है ना, वो इल्म पता नहीं है तो बस ऐसे ही उसको रटा हुआ है। क्यों है अल्लाह सिर्फ इबादत के लायक? इसलिए कि तमाम कामिल सिफात सिर्फ और सिर्फ उसमें है और किसी में है ही नहीं। और वो कामिल सिफात कौन कौन सी है? जो उसके असमाए हुस्ना है, जो उसने खुद बताए हैं अपने, वो सिर्फ उसमें है। आप कोई मखलूक ले आए, जितनों की इबादत की जाती है, जितनों की भी इस दुनिया में कोई भी इबादत कर, सबको लाके देखें इन असमाए हुस्ना के ऊपर, उनको टेस्ट करें, उनमें से कोई उस पर पूरा नहीं उतरता, इनमें से कोई नहीं उन पर पूरा उतरता। और असमाए हुस्ना की जो डेप्थ है ना, वो तो हम समझ ही नहीं सकते, हमारी तो अकलें उसे आजिज हैं। तो ये कामिल सिफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अंदर है, उसके अलावा किसी में नहीं। तो अल्लाह ताला का जो ये नाम है ना, यानी अल इलाह, कि अल्लाह इबादत के लायक है। क्यों इबादत के लायक है? क्योंकि उसके अंदर ये सारे अस्माए हुस्ना, ये सारी सिफात है उसके अंदर। इसका मतलब है, अब ये बहुत गौर से सुने, इसका मतलब है जब हम कहते हैं कि अल्लाह इबादत के लायक है तो क्यों? इसलिए कि वो हई है। वो इबादत के लायक क्यों है? इसलिए कि वो असमी है। वो इबादत के लायक क्यों है? इसलिए कि वो अल कयूम है। वो इबादत के लायक क्यों है? इसलिए कि वो अल अलीम है। वो इबादत के लायक क्यों है? वो अल बसीर है। आप इस तरह लेते जाएं सारे नाम, वो इसलिए इबादत के लायक है अल्लाह के, वो इसलिए है इलाह, अल्लाह इलाह है, वो इबादत के लायक है क्योंकि ये तमाम सिफात अल्लाह में है। तो अल्लाह ताला का ये जो नाम है उसका जाती नाम है, और इस नाम के अंदर उसकी सारी सिफात जमा हो जाती हैं। तो सोचें कि ये नाम कितना अजीम नाम है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के लिए अस्माए हुस्ना, यानी तमाम अस्माए हुस्ना अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि अल गफूर अल्लाह है, अल्लाह का नाम है अल गफूर। देखिए अल्लाह ताला को अल गफूर आप कह सकते हैं, अल्लाह ताला को अल मुजीब आप कह सकते हैं, अल्लाह ताला को रहीम आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं फरमाया अल गफूर को अल्लाह कह सकते हैं। ठीक है, उलट नहीं, जैसे आप कह सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, एक इंसानों की एग्जाम्पल अल्लाह के लिए नहीं दी जा सकती, बस सिर्फ समझाने के लिए। जैद है वो सखी है, जैद है जो रहम दिल है, जैद है जो बहादुर है, तो असल उसका नाम जैद है, उसके बाद उसकी ये सारी सिफाती हैं चीजें। ठीक है, ये सारे सिफाती नाम है अल्लाह के, उसका असल नाम जो उसने अपनी जात का लिया वो अल्लाह है। ठीक है, तो अस्माए हुस्ना अल्लाह ताला के इस नाम की एक्सप्लेनेशन है कि अल्लाह कैसा है। अल्लाह वो ऐसा है, अल्लाह वो ऐसा है, अल्लाह वो ऐसा है, जैसे मैं आपको सारी चीजें बताई, हई है, कयूम है, समी है, बसीर है, हकीम है, रजाक है, मुजीब है। तो ये सब सिफात उसमें समो गई अल्लाह नाम में। सही है ना बात? अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला का आगे ये दो सिफाती नाम आए, अर रहमान और अर रहीम। देख लें अल्लाह ताला ने बसमला में अपना कोई और नाम नहीं रखा। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह कहार है, वो जब्बार है, वो समी है, वो बसीर है, वो कोई भी और। अल्लाह ताला अपना सिफाती नाम भी तो रख सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया अपना जो ये कलिमा हमें सिखाया, और मैंने आपको बताया सूरह नमल में तो पूरा ये कलिमा मौजूद है कुरान करीम में, यानी 114 दफा ये कलिमा आता है, 114 सूरतें हैं, सिर्फ सूरह तौबा के शुरू के अंदर नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन फिर वो सूरह नमल में आ गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो 114 पूरे हो गए। तो ये कलिमा इतनी दफा जब पढ़ना है तो क्या चीज है इस कलिमे में, इसमें अल्लाह ताला के ये कोई ऐसे ही वो खास ही नाम होंगे, बहुत ही अहम ही नाम होंगे कि अल्लाह ताला ने और कोई नाम छोड़ के अल्लाह और उसके बाद अर्रहमान और अर्रहीम नाम लिए। देखें इससे पता चलता है कि ये दो नाम भी कितने इंपॉर्टेंट है, और खासुल खास इसमें अल्लाह ताला का नाम अर्रहमान, बेहद रहम करने वाला। हालांकि दोनों ही ये नाम जो है ना रहम से निकले में, दोनों में बहुत एग्जेजुरेशन है, यानी बहुत मुबालगा है इनके अंदर, बहुत ज्यादा का माना आता है इसमें, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है वो अभी इस पे आते हैं, लेकिन बेसिकली आप बात समझ लें कि रहम से ही दोनों लफ्ज निकले हैं। और रहम का मतलब क्या होता है? नरमी करना, किसी को फायदा देना अपने उससे, किसी के ऊपर मेहरबानी करना, और उसकी वजह से उसको फायदा देना। तो जब हम कहते हैं अर्रहमान तो उलमा कहते हैं अल्लाह, जैसे अल्लाह ताला का नाम है इसी तरह अल्लाह के बाद अल्लाह ताला का एक और नाम है और रहमान जो भी किसी और का नाम नहीं हो सकता, जैसे अल्लाह किसी और का नाम नहीं हो सकता, इसी तरह अर-रहमान भी अल्लाह के बाद जो टॉप का नाम है वो अर-रहमान है। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में, कुल अदउल्लाह अव अदउर-रहमान, अल्लाह कहो या रहमान कहो, एक ही बात है, उसी के लिए सारे अस्माए हुस्ना, यानी सारे अस्माए हुस्ना अल्लाह के लिए, या तुम रहमान भी कहो तो सारे अस्माए हुस्ना रहमान के लिए, ये है आयत का मतलब। तो ये इसका मतलब अल्लाह कह दे या रहमान, अर-रहमान कह दे, एक ही है। इसी वजह से इंसानों के नाम रहमान नहीं रखने चाहिए, पता है आपको, अब्दुल रहमान रख दे ठीक है, लेकिन रहमान ना रखें। और किसी का नाम अब्दुल रहमान होता है तो रहमान साहब कहते हैं, ये भी सही नहीं है। अल्लाह ताला को जो महबूब है दो नाम है, वो दो नाम कौन से हैं जो अल्लाह के महबूब है, हदीस में आता है इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको ये बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से इस कोर्स के अंदर आपको जितनी भी बातें बताई जाएंगी, या तो अहदीस से होंगी, या उलमा की बात होगी, मुफस्सिरीन की बात होगी, मुहद्दिसीन की बात होगी, कोई भी मेरी अपनी बात नहीं है कि मैं आपको अपने जहन से सोच सोच के बातें बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मगर मुश्किल हो जाता है ना कि मैं आपको हर वक्त बताऊं जी मैं फलां तफसीर से आपको बता रही हूँ, इस वक्त फलां तफसीर, इस वक्त हदीस का रेफरेंस ये, तो फिर मैं तो सारा वक्त रेफरेंस ही, क्योंकि मेरे पास तो ढेरों ढेर तफासीर है और उनमें से निचोड़ आप लोगों को आगे रखा जाता है। अब मुमकिन नहीं होता कि मैं हर एक चीज का नाम और पेज नंबर और ये सब आपको बताऊं, ठीक है। लेकिन ये कम से कम आप बात समझ लें कि ये सारी ऑथेंटिक हदीस होती हैं, और इंशाअल्लाह ताला, और कोई भी बात मैं अपने तौर पे नहीं कह रही होती, ठीक। अच्छा, तो अच्छा, अल्लाह ताला के जो दो बहुत महबूब नाम है, अब्दुल्लाह नंबर टू, अब्दुर्रहमान, ठीक है। इससे भी पता चलता है कि ये दोनों नाम अल्लाह के नाम है। अच्छा, अब ये एक सिर्फ नाम है रहमान, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने पूरी सूरत उतार दी, किसी और अल्लाह के नाम के ऊपर पूरी सूरत नहीं है। और पूरी सूरत क्या एक्सप्लेन कर रही है पता है आपको, सूरत रहमान में क्या एक्सप्लेनेशन है, अल्लाह ताला का ये नाम, इसकी एक्सप्लेनेशन है पूरी सूरत, कि रहमान कैसा है, रहमान ऐसा है, रहमान ने ये किया, वो जिसने ये किया वो है रहमान, वो जिसने ये किया वो है रहमान, ये पूरी सूरत अल्लाह ताला के इस एक नाम के ऊपर ही है, उसी की एक्सप्लेन, और कोई बात नहीं है उस पूरी सूरत में। तो कितना जबरदस्त नाम है। और अक्सर आप देखेंगे नाम कुरान करीम में जोड़े जोड़े की सूरत में आए, ये अल्लाह ताला का जो नाम अर-रहमान है ना, ये यहाँ पे तो अर-रहीम के साथ आया है, मगर ये हार्डली पेयर होके और कहीं आया, हार्डली, ठीक है। दूसरा अल्लाह ताला का नाम अर-रहीम, वो उसमें भी रहम का ये बात, रहम करने वाला, उसमें भी यही बात है, और उसमें भी एक्सटेंसिव है कि बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला, बहुत ज्यादा, यानी मुबालगा है उसके अंदर भी। अब क्या फर्क है इसके अंदर, अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि अर-रहमान वो है कि जब भी उससे मांगा जाए तो अता करता है, और अर-रहीम वो है कि जब उससे कोई ना मांगे तो वो नाराज होता है। जैसे एक शफीक मेहरबान उस्ताद होता था, वो कहता है कि मेरा स्टूडेंट रहनुमाई के लिए मारा मारा क्यों फिर रहा है, वो क्यों उधर उधर जाता है, मेरे पास आए, या एक माँ है उसकी ख्वाहिश होती है उसकी औलाद दर दर ना जाए अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान, वो नहीं चाहता कि उसकी मखलूक कहीं भी अपनी जरूरत के लिए परेशान होती, फिर तो वो उसको अच्छा नहीं लगता कि जब मखलूक ना मांगे, ठीक है, वो अता करता है, उसी से मांगना चाहिए। ओ देखिए, दुनिया में आप किसी से दो चार दफा मांग ले तो वो नाराज होते हैं, अल्लाह ताला तब नाराज होता है जब उसे ना मांगा जाए। तो मांगने से कभी पीछे ना हटे, मांगे, बाज लोग कहते नहीं छोटी सी चीज के अल्लाह से मांगनी, ये तो मैं खुद ही कर सकती हूँ, नहीं, कोई चीज भी हम खुद नहीं कर सकते। जूते का तस्मा भी मांगना है तो हदीस में आता है अल्लाह से मांगो, सहाबा कराम के पास नमक खत्म हो जाता था वो भी अल्लाह से मांगते थे, ठीक है, आप सबब इख्तियार करते हैं, आप जाएंगे कोई चीज कहीं से लेकर आएंगे, लेकिन मांगेंगे अल्लाह से ये? अच्छा, दूसरा एक और अरबी कायदे के मुताबिक अर-रहमान का माना जो है ना, इसमें क्या आता है, एक्सटेंसिव होना, एक्सटेंसिव समझते ना, यानी इसमें वुसत है कि बहुत ज्यादा उसकी रहमत, यानी उसकी रहमत अपनी सारी मखलूक पे छाई हुई है, इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत है सुभान अल्लाह, कि ये अल्लाह ताला की रहमत ही है जिसकी वजह से ही आप दुनिया में किसी को किसी से मोहब्बत करते हुए देखते हैं। अगर माँ बच्चे से मोहब्बत कर रही है ना, तो अल्लाह की रहमत है उस, वो देखें ये हदीस से आपको सही समझ आएगी बात, कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, कितने हिस्से किए, 100 हिस्से किए, ठीक है, उनमें से एक हिस्सा जो था, ये हदीस में आता कि एक हिस्सा जो था वो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उतारा और उसको बांट दिया सब में, और 99 हिस्से उसके पास हैं। वो एक हिस्सा जो उसने दुनिया में उतारा है ना, इस एक हिस्से की वजह से जानवर भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जानवर भी अपने बच्चे के लिए आगे खड़ा हो जाता है, माँ बाप औलाद से मोहब्बत करते हैं, शौहर बीवी में जो मोहब्बत है, बहन भाइयों में जो मोहब्बत है, रिश्तेदारों में जो मोहब्बत है, पड़ोसियों में, दोस्तों में, ये जो आपस की मोहब्बत के जितने भी ताल्लुकात आप देखते हैं ना, ये उस एक रहमत का नतीजा है जो बटी हुई है, तकसीम हुई भी जब से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उस वक्त से भी पहले से जितने भी जिन्नात थे या फरिश्ते हैं या और कयामत तक जिसने भी आना है, सबको ये एक रहमत मिली हुई है जिसकी वजह से कोई किसी का ख्याल करता है, कोई किसी को पूछ लेता है, कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई किसी से हमदर्दी करता है। हमें आज अल्लाह ताला हमें माफ करे, हम इतने जाहिल है ना, जब हम ये बात करते हैं आए अल्लाह ताला तो कोई किसी की वो परवाह नहीं है, वो तो फलाने वहां पे भूख से मर रहे हैं, अफ्रीका में ऐसे हो गया, फलाने को साथ ये क्यों अल्लाह ने कर दिया, फलान के साथ ये, इसलिए कि जहालत हमारे अंदर इतनी ज्यादा है तो हम ऐसी बातें करते हैं। अगर हमें पता हो कि ये जो आज अगर मदर टेरेसा के आप गुण गाते हैं, या आप किसी और जितने भी जिन्होंने भी फलाही काम किए, आप उनकी कोई बात करते हैं, तो वो सब जो भी काम करके दुनिया से गए हैं या जो आज दुनिया में काम कर रहे हैं, कोई भी फलाही काम, तो ये उनका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला ने रहमत में से एक हिस्सा उनको दे दिया, उसकी रहमत है जो उसने तकसीम की है। अगर अंदाजा करें कि उस एक रहमत का कितना छोटा छोटा जर्रा, जैसे सारी मखलूक के अंदर बटी हुई है ना, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम, किसी को, लेकिन अगर सारी मखलूक उस एक रहमत की वजह से चल रही है और हर माँ अपने बच्चे को उसकी देखभाल कर रही है, अंदाजा करें जिस रब के पास वो 99 रहमतें होंगी, उसकी रहमत का अंदाजा कर सकते हैं, वो कितना मेहरबान होगा, वो कितना शफीक होगा, उसकी मेहरबानी कितनी ज्यादा होगी। और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज्यादा है, अल्लाह ताला ने जब सारी मखलूकात को पैदा फरमाया और हर एक की तकदीर का फैसला फरमाया, तो एक किताब में जो अर्श पे अल्लाह के पास है, अल्लाह ताला ने ये लिख दिया। क्या पता है आपको, यहां हमें बैठे हुए नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये बताया, अल्लाह ताला ने उनको ये बात बताई है, किसी ने जाके तो नहीं अर्श पे देखा, लेकिन एक किताब में ये लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने फरमाया अपने नबी से, नबी ने हमें बताया कि अल्लाह ताला ने क्या लिखा हुआ है, इन्ना रहमती तगलिबु गदबी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है, सुभान अल्लाह। अगर यानी किसी के आमाल ऐसे हैं कि वो रहमत और गुस्से दोनों का मुस्तहिक होता है, तो अल्लाह ताला उसके साथ रहमत का मामला फरमाते हैं, उसकी रहमत उसके गुस्से पर गालिब है, और ये अल्लाह ताला ने अपने लिए खुद लिखा है, कोई अल्लाह पे कोई चीज लाजिम नहीं कर सकता, ये अल्लाह ने अपने ऊपर खुद लाजिम की है, जब वो मखलूकात को वजूद अल्लाह दे दिया, तब अल्लाह ने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह के लिए कोई कोई इंसान, कोई मखलूक, कोई रूल्स डिफाइन नहीं कर सकती अल्लाह के लिए, अनलेस अल्लाह ताला अपने लिए कोई खुद रूल बना ले। तो अल्लाह ने अपने लिए खुद बनाया ये, सुभान अल्लाह। वरना उसका गुस्सा कोई मखलूक बर्दाश्त ना कर सकती, कोई चल ही नहीं सकता था इस जमीन के ऊपर, कोई नहीं चल सकता था। अल्लाह ताला अगर अपना गुस्सा फरमाने लगता, फिर सूरतुल अनआम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कतब अला नफ्सिह रहमा, उसने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया, लिख दिया अपने ऊपर, फर्ज कर लिया अपने ऊपर रहमत को, सुभान अल्लाह। पर ये इसमें कितनी उम्मीद है इस बात के अंदर, इसीलिए अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि कोई उससे मायूस हो जाए। हाँ मगर ये जरूर है कि बंदा दलेर ना हो और ये ना कहे कि मैं जो मर्जी करता हूं अल्लाह ताला की रहमत है वो खुद ही माफ करेगा। नहीं, उसकी रहमत पाने के लिए तुम्हें उसकी तरफ रुजू करना है, तुम्हें उसकी तरफ बढ़ना है कि मुझे अल्लाह तेरी रहमत चाहिए, ठीक है। और अल्लाह ताला की जो नाम है अर-रहमान, इसमें उसकी आम रहमत है जिसकी रहमत सारे आलम के लिए, सारी कायनात के लिए, जो कुछ पैदा हुआ आज तक और जो कुछ होगा उसके उसके ऊपर हावी है उसकी रहमत, सुभान अल्लाह। इसीलिए कोई और मखलूक रहमान हो ही नहीं सकती ना, बताएं किसी कोई और मखलूक में इतना रहम है कि, यानी अल्लाह ताला की रहमत देखें कैसी है, जो रहमान में एक्सटेंसिव जो आपको बता रही है ना रहमत, यानी किसी खास नस्ल के लिए नहीं, किसी खास कौम के लिए नहीं, किसी खास खानदान के लिए नहीं, किसी खास जमाने के लिए नहीं। कि हम तो किसी के साथ रहम करने लगे तो ये हमारा रिश्तेदार है इसलिए, ये हम मुझे पसंद है इसलिए, ये मेरे मेरे मुल्क का इसलिए, ये मेरी कौम का इसलिए, नहीं। अल्लाह की रहमत सब के लिए है। और वो देखो कि देखे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के काफिर जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की रहमत उसके लिए भी है। वो मुशरिक जो अल्लाह को गाली देता है उसकी औलाद ठहरा के, अल्लाह ताला ने फरमाया इब्ने आदम मुझे गाली देता है, जब वो कहता है कि अल्लाह की औलाद है, ये अल्लाह को गाली देना है, अल्लाह की रहमत उस पे भी है। देखो अल्लाह उसको भी खिला रहा है, पिला रहा है, पाल रहा है, हिफाजत कर रहा है उसकी। कितने शर होते हैं इंसान के इर्द गिर्द, कितने जिन्नात और शयातीन है उसको तो वो पता है, अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे हुए हमारी हिफाजत के लिए, ये उसकी रहमत है। वरना हदीस में आता है कि ये जिन्नात शयातीन इंसान को भंबोड़ दें, उसको तो रहने ना दें, तो लेकिन अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए रखे हैं, तो काफिर की भी हिफाजत फरिश्ते कर रहे हैं, आंख की हिफाजत के लिए फरिश्ते हैं, उसके जिस्म की हिफाजत के लिए फरिश्ते हैं, अल्लाह उसको तकदीर में लिखी हुई चोट उसको नहीं लगती, वो फरिश्ते साथ हिफाजत के लिए लगे हुए। आप मुझे बताएं क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं है, उसको भी सांस देने का मौका दे रहा है जो अल्लाह का कुफर कर रहा है, और शैतान को भी उसने ढील दे दी, ये भी उसकी रहमत का ही तो हिस्सा है, ये शैतान को भी उसने जाने दिया कि जा तुझे कयामत के दिन तक की मोहलत है। तो अर-रहमान है, अर-रहमान, हमें पता ही नहीं है ये नाम कितना अजीम है, हमें पता ही नहीं। अगर हमें पता हो इस नाम की डेप्थ तो हम हैरान हो जाए। यानी हदीस में इतने हद तक आता है कि अगर काफिर को अल्लाह ताला के पास मौजूद तमाम तर रहमत की वुसत का अंदाजा हो जाए तो वो कभी जन्नत से मायूस ना हो। यानी काफिर को भी अगर पता चल जाए ना कि अल्लाह की रहमत कितनी है तो वो भी कहेगा कि मैं भी जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर, इतनी उसकी रहमत है। तो रहमान में क्या है, एक्सटेंसिव होना। और ये नाम अल्लाह ताला का 57 टाइम्स आया कुरान में। और अर-रहीम, रहीम इंटेंसिव, इंटेंस, एक एक्सटेंसिव इंटेंसिव को समझते हैं ना आप, यानी इंटेंस है जिस पे है, मुकम्मल है। और उलमा कहते हैं कि अर-रहीम अल्लाह ताला आखरत में है, अर-रहमान क्या है दुनिया में है, दुनिया में अल्लाह ताला की रहमत सब के लिए, लेकिन अर-रहीम अल्लाह ताला कहाँ है, आखरत में, क्योंकि वहां पे वो सिर्फ मोमिनों के ऊपर रहम करेगा मुकम्मल। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कौन सी सूरत है, सूरह अजाब वकाना बिलमुमिनीना रहीमा। तो अल्लाह ताला की रहमत मोमिनों के लिए, और रहीम के अंदर ईमान वालों पर स्पेसिफिक रहमत का जिक्र है। तो मोमिनों को वो उस दिन माफ करेगा, उनको जन्नत में दाखिल करेगा, उनसे दरगुजर करेगा, ये अल्लाह ताला की सिफत रहीम में। तो अल्लाह ताला ने अपनी ये दो सिफात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रख दी और हमें समझा दिया कि देखो याद रखो तुम्हारा रब बड़ा रहम करने वाला है, बड़ा ही रहीम है, और किस हद तक के, कितने दर्जे तक वो अपनी मखलूक पर मेहरबान है, इसका इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता, अंदाजा नहीं कर सकता। आप देख लें कि हम बाज दफा किसी काफिर, किसी मुजरिम को सोच के कहते हैं कि अल्लाह इसको पकड़ता क्यों नहीं है, इसको तो ऐसे, लेकिन अल्लाह ताला का रहम होता है कि अल्लाह ताला चांस देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, ताकि किसी वक्त हो के कोई पलट आए, ये उसका रहम होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे भी ज्यादा रहम करने वाला है जितना कि माँ अपने बच्चे पर रहम करती है, और फिर भी हमें अल्लाह से शिकायत होने लगती है, अस्तग़फिरुल्लाह, कि अल्लाह ने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। माँ अपने बच्चे पर जितना रहम करती है उससे ज्यादा अल्लाह ताला रहम करने वाला है। सोच ले ना, आपके 99 रहमतें हैं उसके पास, और कयामत के दिन अल्लाह वो 99 रहमतों के अलावा ये जो एक रहमत है ना दुनिया में उसने उतारी, ये एक हिस्सा भी ले लेगा, और सारे 100 हिस्से अल्लाह के पास होंगे, उनके जरिए अल्लाह रहम फरमाएगा। तो सोचे उस दिन अल्लाह ताला की रहमत कितनी होगी। और ये अल्लाह ताला की सुभान अल्लाह एक रहमत है, हम सब जो भी जितनी यहाँ पे माएं सुन रही हैं वो थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर हमारे बच्चे को जरा भी कोई तकलीफ होती तो हम कैसे बेचैन हो जाते, और बच्चा बीमार हो जाता है तो हम रात बरात भर जागते, हमारा ये दिल करता है कि बच्चे को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। बच्चा रोता है तो माँ रोती है, उसका दिल रोता है, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए माँ उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ कहती मैं खुद भूखी रह जाऊं इसका पेट भर जाए, खुद जागती है उसको सुलाती है, खुद गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर लेती है, कहती इसको आंच ना आए। तो ये क्या है, ये वो राफत और शफकत है ना जो अल्लाह ने उस रहमत के एक हिस्सा इसको दिया। अंदाजा करें फिर उस अरहमुर्राहिमीन का रहम, कि अल्लाह ताला अरहमुर्राहिमीन है ना, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वो अरहमुर्राहिमीन है, यानी तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, फिर भी लोग अल्लाह से बदजन हो जाए और उसके ऊपर एतराज करने लगे। तुम किसी के हमदर्द नहीं हो सकते जितना अल्लाह हमदर्द है। तुम्हें देख के रहम आता है किसी के ऊपर, ओह इसको अंधा क्यों बनाया, तुम उसके ज्यादा उसके ऊपर रहम करने वाले हो। तुम जब कभी अपनी जुबान खोलो इस पे तो सोचो कि एक उस रहमत का जर्रा मेरे पास है जिसकी वजह से मुझे इस पे रहम आ रहा है, तो अल्लाह तुझे कितना आता होगा, तेरे पास तो 99 रहमतें हैं। अगर कभी ये दिल में ख्याल आए इसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, फलां के साथ ऐसा क्यों, हमेशा सोचे मैं क्या उसके ऊपर रहम करूंगी, या मुझे क्या इसके ऊपर तरस आ रहा है, या मैं कौन सी बड़ी रहम करने वाली हूं, मैं वो इस चूंटी के बराबर या उससे भी कम रहम जो मुझे मिला है उसके जरिए रहम कर रही हूं, अल्लाह तुझे कितना रहम आता होगा इस पे। और माँ को भी किस बच्चे पे सबसे ज्यादा रहम आता है, जो कमजोर होता है, जो छोटा होता है, तो अल्लाह ताला को भी जो उसके कमजोर बंदे होते हैं उनके ऊपर बड़ा रहम आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैदी पेश किए गए, तो एक कैदी अपने बच्चे, औरत थी वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, जब उसका बच्चा उसको मिला, देखिए ना अब जंग का आलम है, कोई किसी को किसी का पता नहीं है, अब किसी का बच्चा गुम हो जाए किसी माँ का, अब सोचो उस माँ का हाल क्या हो जाता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन आप देखते हैं ऐसे वाकयात जहां पे किसी का बच्चा अगवा हो जाए, गुम हो जाए, वो माएं तो ना उनके लिए जिंदगी है तो ना मौत है, ऐसे वो तड़पती है। तो वो जब उस माँ का बच्चा गुम हो गया, वो ढूंढती फिर रही अपने बच्चे को, जब बच्चा मिलता है तो वो उसको मोहब्बत से कैसे सीने से लगा लेती है और दूध पिलाने लगती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस माँ से ज्यादा अपने बंदों पर रहम करने वाला है, अरे हर तरह से अपने बंदों पे रहम करता है। तो इसलिए वो जात माँ बाप से ज्यादा रहम करने वाली, कि माँ बाप की बार बार इसलिए बात आती है कि माँ बाप से ज्यादा कोई भी सिंसियर नहीं होता, कोई भी इतना होंगे सिंसियर और लोग होंगे, लेकिन जितने माँ बाप होते हैं ना अपने बच्चे के लिए, उस तरह से कोई नहीं होता। तो जब बंदा किसी दुश्मन के खौफ से या मुसीबतों की वजह से या कोई परेशानियों की वजह से कोई मसलों में फंस गया है, किसी ऐसे गम में मुब्तला हो गया है, कोई ऐसी चीज उसके ऊपर टूट पड़ी है आफत, तो उसमें जब वो अल्लाह की तरफ दौड़ता है और उसके दरवाजे पर अपने आप को डाल देता है और उसके सामने रोते हुए अपने रुखसार उसकी चौखट पे खाक में रगड़ता है और कहता है, ए रब उस बंदे पर रहम फरमा जिस पर तेरे सिवा कोई रहम करने वाला नहीं, तेरे सिवा जिसका कोई मददगार नहीं, तेरे सिवा जिसका कोई ठिकाना नहीं, तेरे सिवा कोई जिसका फरियाद रस नहीं, मैं तेरे सामने हूं, मैं आजी करने वाला हूं, मैं तेरा मोहताज हूं, मैं तुझसे सवाल करता हूं, तुझसे उम्मीद रखता हूं, तेरे सिवा कोई जाए पनाह नहीं, तेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं, ए अरहमुर राहिमीन, ए तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक आदमी को सुना था कि वो इस तरह से दुआ कर रहा है, तो फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को अरहमुर राहिमीन कहने वालों के लिए बेकरार कर दिया। जो भी आदमी 3 दफा अरहमुर राहिमीन कहता है, फरिश्ता उसको खुशखबरी के तौर पे कहता है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला तेरी तरफ मुतवज्जे हो गया, मांग ले जो मांगना है। ये मुस्तदरक की रिवायत है, अब मांग ले जो मांगना है। अरहमुर राहिमीन जब तूने उसको कह के पुकारा है ना, तो वो सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात तेरी तरफ मुतवज्जे है अब। तो इंसान के लिए ये भी तो अल्लाह का रहम है ना, कि एक फरिश्ते को रख दिया कि जो ये कहता है। तो आप देखते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआओं में दुआ है, अन्नी मसनी यदुर वअंता अरहमुर राहिमीन, ना तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, तो वो बड़ा ही मेहरबान है और उसके ये नाम बहुत ही प्यारे हैं, उसको इनामों के साथ पुकारे, इनामों की मिठास को समझें, इनमें कितनी रहमत है और शफकत है, इस चीज को पहचाने, और तो फिर आपको अल्लाह के ऊपर प्यार आएगा कि मेरा रब कैसा मेहरबान है। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत की दौलत अता फरमा दे। सब दौलतें पीछे हैं, ये दौलत सबसे बड़ी दौलत है जो किसी को मिल जाए, कि उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत ऐसे पैवस्त हो जाए, गढ़ जाए, कि जब फरिश्ते आए मौत के वक्त तो दिल खोल के देखे तो उसमें सिर्फ अल्लाह ही हो, सारे दिल में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। तो अल्लाह ताला ही दौलत हमें भी अता फरमाए, इस कुरान के जरिए जो सफर हमने ये शुरू किया है इल्म का, अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में बढ़ाता ही जाए। अमीन या रब्बल आलमीन। तो इंशाअल्लाह ताला होमवर्क आपने लिख लिया ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की प्रैक्टिस और शऊर के साथ और प्यार के साथ, और सोच के कि किसका नाम ले रहे हैं, अल्लाह कौन और अर्रहमान कौन, अल्लाह वो ताल्लुक जो माँ को अपने बच्चे के साथ होता है, अल्लाह वो नाम है। ये आज बिस्मिल्लाह का सुन के आपको कुछ अंदाजा हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी ज्यादा है, और क्या आप लोग बता सकते हैं कि उसकी रहमत का सबसे बड़ा मजहर क्या है, यानी इजहार किस चीज में होता है? कि उसने हमें कुरान दिया, ये उसकी सबसे बड़ी रहमत है। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया। अर रहमान कौन है? अल्लमल कुरान, जिसने कुरान सिखाया। तो इससे पता चलता है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इस रहमत को समेटने के लिए बैठे हैं। आपने अपने आप को तैयार किया इस रहमत को लेने के लिए। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है और कितनी बड़ी नेमत है जो आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये अल्लाह की सरासर रहमत है। तो उसने अपनी रहमत को इस तरह से उतारा है जमीन के ऊपर कुरान की शक्ल में भी, और भी उसकी बेशुमार रहमतें हैं, मगर सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस रहमत का जिक्र किया। इवन हमें इंसान बनाया इससे भी पहले अल्लाह ताला ने अल्लमल कुरान बताया। तो कभी इस रहमत को लेने से पीछे ना होइएगा, हमेशा आगे बढ़ के इस रहमत को सीने से लगाएं, और इस पर हमेशा शुक्र अदा करते रहिएगा। जब भी आपकी क्लास मुकम्मल हो तो शुक्र अदा करें, क्यों? आपको रहमत का एक हिस्सा मिल गया। अल्लाह हू अकबर। तो इंशाल्लाह ताला इन बातों को किसी के साथ हम शेयर करेंगे, ये होमवर्क है हमारा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।